کامیابی اور عزت اور اس کے علاوہ آپ کے خود روزی کا باعث بنے گا۔ پروگرام صبح زندگی میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام صبح زندگی میں۔ ایک اور ہفتہ شروع ہو گیا ہے اور ایک بہت زبردست پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر ہم حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور شخص بھی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔
جی، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام،
کیسے ہیں؟ الحمدللہ،
الحمدللہ ٹھیک ہے بالکل۔
میں اپنے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں، اس امید سے پروگرام کو شروع کرتے ہیں کہ آپ سب نے اپنی خوبصورت سی صبح کا آغاز ایک خوبصورت سی مسکراہٹ اور آپ کے اور ہمارے اپنے پروگرام صبح زندگی کے ساتھ کر لیا ہوگا۔ جی،
اچھا، ہفتے کا موضوع تو آپ کو معلوم ہوگا۔
جی، قضاوت۔ جی،
اور اس کے بارے میں ہم نے اعلان بھی کیا تھا پچھلے ہفتے کہ قانع ہونا، یعنی کسی چیز کو کہنا کہ بس یہی کافی ہے ہمارے لیے، اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کس چیز میں ہم لوگوں کو قناعت کرنی چاہیے، کس چیز کے لیے نہیں کرنی چاہیے، اور کس چیز کے بارے میں اگر نہیں کیا تو بہت ہم لوگوں کو نقصان ہوگا، اور اگر کسی چیز، بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں اگر ہم لوگوں نے قناعت پیشہ کیا تو ہم لوگوں کو نقصان ہو جائے گا یقیناً، اس طرح سے کہ ہم لوگ اس کو زیادہ ہر حال میں اس کو حاصل کرنا ہے ہم لوگوں کو۔
جی بالکل،
اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک یہ چیز، اور دوسری یہ چیز کہ ہم لوگوں کے آج کے موضوع کے بارے میں آپ بتا دیں۔
پہلے میں آج کے موضوع کے بارے میں بتاتے چلوں اگر آپ اجازت دیں تو۔ آج کا جو ہمارا ہفتے کا دن ہوتا ہے وہ طرز زندگی، لائف سٹائل کے بارے میں ہوتا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر حاجی بہادر صاحب ہوں گے اور ہم ان سے ذیابیطس کے بارے میں بات کریں گے، جو ایک بہت اہم اور بہت گمبھیر مسئلہ ہے۔ جی،
اس میں دراصل ہم لوگ، یعنی اس کے دو پہلو ہیں، خود یعنی اس بیماری کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ کیسے بچا جا سکے، اپنی طرز زندگی میں تبدیلی لا کر،
بالکل،
اور دوسری چیز یہ ہے کہ طرز زندگی چلیں، آپ نے تبدیل، خدا نخواستہ ہو گئی آپ کو ذیابیطس،
جی،
تو اب کیسے رہیں؟
بالکل،
ایک تو ہے کہ آپ بیماری سمجھ کے اس کو اپنی زندگی چھوڑ دیتے ہیں۔
یہ آپ نے بہت اچھی بات کی۔ ایک تو کہ ہم اس کو شروع ہونے سے پہلے اپنے طرز زندگی میں کیا تبدیلیاں لائیں، اب شاید وہ ورزش ہو، جیسا بھی ہو، ہمارے رفتار زندگی میں جس طرح بھی ہے، اس سے ہم بچ سکیں، اور اگر اللہ نہ کرے ہو گئی تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یا اور بھی جو طریقے ہیں، ایسا آیورویدک ہو گئی یا ہماری ہومیوپیتھک وغیرہ جو ہو گئی، جی، اس میں ہم کیوں کیا کیا کرنا چاہیے، ہم ان شاء اللہ اس بارے میں ضرور بات کریں گے۔
تو چلتے ہیں ناظرین، پہلے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ ہم سے رابطہ کیسے کر سکتے ہیں، پروگرام کے دوران یا پروگرام کے بعد۔ جی ناظرین، پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام میں۔ ہم نے بھی آپ کے لیے بہت ساری چیزیں تیار کی ہوئی ہیں، بہت ساری تو نہیں ہیں لیکن جو ایک دو ہیں وہ بہت اہم ہیں، اسی لیے بہت ساری آپ اس کو مان سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گئی بات، ایک تو یہ ہے کہ ابھی نیٹ کے ذریعے ہم آپ سے کنیکٹڈ ہوں گے انشاءاللہ، لیکن اگر دن بھر آدمی کنیکٹ رہے اس کے ذریعے بہت سارے نقصانات پیش آ سکتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے آدمی بیٹھا رہتا ہے اسی کے سامنے، ایسے واقعات بھی سامنے آئے ہیں کہ معلومات 2 دن یا 3 دن بیٹھنے کی وجہ سے مسلسل خدا نخواستہ کسی کو بہت ہی بڑے مسائل پیش آ گئے، یا حتیٰ بعض کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ 3 دن مسلسل کمپیوٹر کے سامنے بیٹھنے کے بعد کئی، یعنی کیسز ہو چکے ہیں مختلف جگہوں پہ دنیا میں کہ وہ مر گئے وہ صاحب یا صاحبہ، یا اپنے بچوں کو کھانا نہیں دیا، اس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ ان کو پریشانی پیش آ رہی
ہے۔ یہ بات آپ کی خیر بہت اچھی ہے۔ ایک طرح کا ایک یہ ہے کہ اس میں ایسی چیز ہے کہ آپ بیٹھ گئے اس کے پیچھے تو پھر آپ کو اٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت سے کاموں سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ مجھے اس چیز کا شخصاً تجربہ رہ چکا ہے، کبھی ہو سکتا ہے سب خواتین کے لیے میں بولوں، وہ دودھ چولہے پر رکھا ہوتا ہے، اگر وہ نیٹ پہ بیٹھ گئی مثال اس طرف کوئی آپ ضروری کام کر رہے ہیں وہ دودھ ابل ابل کے
دودھ ہر حال میں ابلے گا، آپ نظر بچائے نا وہ دودھ ابل جائے گا ادھر، وہ اس میں کوئی فائدہ نہیں، آپ 2 گھنٹے کھڑے رہے 1 سیکنڈ نظر بچائیں گے دودھ ابلے گا۔
یہ تو ہے، لیکن مطلب یہ کہ نیٹ کا میں نے دیکھا ہے، میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ چکا ہے، یعنی میرا شخصاً جو تجربہ رہا ہے کہ میں نے کہا ابھی بس 2 منٹ اور کر کر کے وہ ابل کے ختم ہی ہو گیا دودھ۔
ہاں بالکل، اس میں بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ تھوڑے فیکٹس اور فگرز اس سلسلے میں تیار کر کے لایا ہوں، اور ناظرین کو یقیناً اندازہ ہوگا کہ ایک مفید چیز کو ہم لوگ غیر مفید کیسے بناتے ہیں۔ ویسے بہت سارے لوگوں کو اندازہ ہے اس کا، لیکن تھوڑے اس کے بارے میں، یعنی اعداد و شمار آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ اور جو چیز ہے، آج کل نزل زکام کا بہت زور ہے، یعنی دوسری چیزوں کا اپنی جگہ پر زور ہے، لیکن موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ٹھنڈک کی طرف جب ہم بڑھتے ہیں تو یہ ٹھنڈک باعث بنتی ہے کہ نزلہ، زکام، آپ جو بھی سمجھیں، مختلف بیماریاں جس کی شروعات یہ ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے تھوڑی دیر میں۔ ہم لوگوں کو انشاءاللہ جوائن کریں گے ڈاکٹر حاجی بہادر، جو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے، اسٹوڈیو کے باہر بیٹھے ہوئے، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ہم لوگوں کے پاس آئیں گے اور ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام صبح زندگی میں۔
السلام علیکم، میں آصف خان آپ لوگوں کے سامنے پھر سے حاضر ہوں کچھ نیا لے کے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں دلی کی ایک پرانی دلی شہر میں موجود ہوں جس کا پرانا نام شاہجہان آباد تھا۔ بہت ہو گئی ہسٹری اور بہت ہو گئی تاریخ کی باتیں، ہم لوگوں نے مسجدیں مقبرے دیکھے، آج جو ہے وہ ایک دم نیا چیز ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں مسالوں کی مارکیٹ میں جو ہے یونانی جو جڑی بوٹی ہیں وہ ان کا کیا یوز ہوتا ہے، ان کو کون بیچتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ہیں احمد صاحب، محمد احمد صاحب آپ ہمیں جو ہے تھوڑا سا یونانی جو جڑی بوٹیاں ہیں، پہلے آپ تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیے۔
بیک گراؤنڈ یہ کہ ہماری یہ فرم جو ہے 180 سال پرانی دکان ہے۔
180 سال پرانی
دکان ہے
جی۔
جو کہ نام پڑتا تھا پہلے حاجی نظام الدین زین العابدین
جی۔
ہم لوگ بھی ایران سے، ہمارا تعلق رہا ہے وہیں سے آئے تھے ہمارے بڑے لوگ۔
اچھا، مطلب آپ لوگ ایران سے آئے؟
ایران سے ہمارے بڑے لوگ آئے تھے، یہاں سیٹ ہو گئے۔
اچھا، ایران سے مغلیہ دور میں جو ہے آپ لوگ ایران سے ہی آئے، تو آپ کا جو تعلق ہے وہ ایران سے ہے؟
تو ہمارے لوگ جو ہے یہاں پہ آگے سیٹ ہو گئے
جی،
دادا پر دادا
جی،
پھر اب یہ نئی جنریشن چوتھی جنریشن چل رہی ہے ہماری۔
اچھا جی،
تو ہماری ایران سے جو آئٹم آنے والے ہیں جن میں سالن مصری ایرانی جو ہے 6,000 روپے کلو ہے
جی،
یہ ایران سے آتی ہے۔ سالا پنجا ایرانی آتا ہے ایران سے
جی،
سالا پنجا۔
تو آپ کے پاس کچھ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں تو ہاتھ میں لے کے تھوڑا سا دکھائیں گے تو جو ہے بہت؟
ابھی تو آج بھی نہیں ہے دکھانے والا۔
اچھا، مطلب کوئی بھی مسالے وغیرہ آپ کے پاس ہوں تو جیسے وہ سامنے رکھے ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں۔
ہاں، یہ دیکھیے، یہ جڑی بوٹی ہے، اس کا نام ہے پنیر ڈوڈی۔
اچھا،
حیات، یہ ڈائبٹیز شوگر کے کام میں آتی ہے۔
اچھا،
اس کے برابر ایک دوائی ہے آملہ ہے یہ آملہ جو ہے یہ آتا ہے آپ کا بال وغیرہ دھونے کے کام میں
جی جی،
اور پیٹ کے کام میں بھی آتا ہے، کھائی جاتی ہے
جی۔
ایک یہ نرملی دوا ہے، یہ دردوں کے کام میں آتی ہے، جوڑوں میں درد ہو جائے
جی جی،
اس کام میں آتی ہے۔ اور
تو یہ یونانی جو دوائیاں ہیں آپ تقریباً، مطلب آپ کو 180 سال ہو گئے، مطلب جب آپ کے جو مطلب وہ جو تھے پرکھے تھے جو آئے تھے وہ تبھی تھے وہ جو ہے یونانی دوائیں بیچ رہے ہیں؟
ہاں، جبھی سے یہی دوا چل رہی ہے ہماری۔
اچھا، مطلب آپ نے جو ہے اپنے والد سے سیکھا، انہوں نے ان کے والد سے سیکھا، تو آپ اچھا مطلب جنریشن وائز تو آپ اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں؟ تو مطلب ہر طرح کی دوائیاں دیتے ہیں اس میں؟
جی، ہر طرح کی دوائیں۔
اچھا، کوئی خاص جڑی بوٹی ہے ابھی آپ کے پاس کچھ بھی جو آپ ہاتھ میں لے کے دکھائیں؟
اس وقت تو آج بھی نہیں ہے جو ہمیں دکھا دے آپ کو۔
اچھا، آپ تو اس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں؟
اس کے بارے میں ذکر،
یہ اچھا، اس کو بتائیے اس کا تھوڑا سا یوز۔
اس کا یوز جو ہے ڈائبٹیز میں آتا ہے، یہ شوگر میں۔
اچھا، ڈائبٹیز جو آج کل، دیکھیے ڈائبٹیز جو ایک بیماری ہے وہ اس وقت بہت زیادہ جو ہے پوری دنیا میں جو ہے وہ قابض ہو چکی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آج کل ہو جاتی ہے اور بڑوں کو بھی ہو جاتی ہے، پہلے بزرگوں کو ہوا کرتی تھی زیادہ میٹھا کھانے سے یہ شوگر کی بیماری، پر آج کل جو ہے وہ چھوٹے اور جو ہے جو ینگ لوگ ہیں، جو جوان لوگ ہیں، ان کو بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس کی جو دوائی ہے وہ جو ہے ہر اس میں جو ہے موجود ہے، انگلش دوائیاں ہوتی ہیں، ہومیوپیتھک کی بھی ہوتی ہیں، اور یونانی میں، کیونکہ یونانی جو دوائیاں ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے پرانی دوائیاں ہیں، مطلب پوری دنیا میں سب سے پرانی جو تکنیک ہے دوا دارو کی وہ یونانی ہے۔ ہاں، تو تھوڑا سا آپ اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ کہاں ملتا ہے یہ چیز؟
دیکھیے، یہ ایران سے آتی ہے۔
اچھا، دیکھیے اس میں ایک خاص بات جب یہ بتا رہے تھے صاحب ہمیں کہ یہ ایران سے آتی ہے،
تو ہمیں پنیر ڈوڈی،
پنیر ڈوڈی،
اور یونانی میں اس کو کہتے ہیں تخم حیات،
تخم حیات
جی، وہی سے آتی ہے ایران سے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ 8 دانے
جی
کا پانی میں ابال لیں رات کو
جی،
اور پلے ڈھک کے رکھ دیں، اور صبح کو یہ اس کو پی لیں آپ پانی کو۔
اچھا، مطلب اس کو جو ہے 8 دانے اس میں پانی میں ڈال کے ابال لیں، اور پھر صبح جو ہے اس کو جو ہے نہر منہ مطلب جو صبح مطلب بنا کچھ کھائے پیے اس کو جو ہے کھا لے تو اس کو جو ہے مطلب کافی آرام ہوگا، شفا ہوگا اس سے جی جی۔ ماشاء اللہ، یہ جو ہے یہ ایرانی جڑی بوٹی ہے جس کا نام آپ بتا رہے تھے تخم حیات۔ تو تخم حیات کو تو جو ہے ہم لوگ یہاں رکھ دیتے ہیں واپس
جی۔
تو اور کچھ، یہ کیا ہے؟
یہ کھلی جل، پان کی جل،
پان کی
جل،
پان کی جیسے جو پان کھایا جاتا ہے اس کی جڑ ہے،
اس کی جڑ ہے۔
تو اس سے کیا ہوتا ہے؟
یہ جناب خاص طور پہ گلے کے کام میں آتی ہے، جس کے اگر ٹونسل آ جائے،
اچھا،
گلے میں خراش ہو
جی جی،
نزلا زکام ہو،
ہاں،
تو اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔
اچھا، اس کا استعمال کیا جاتا ہے؟ تو ویسے جو ہے اب سردیاں آ گئی ہیں تو اس میں نئی نئی جو ہیں دوائیں جو ہیں مارکیٹ میں بازار میں جو ہے موجود ہیں، بٹ اس میں جو ہے ایک پان کی جڑ بھی ہے، جس کو اگر لینے سے جو ہے گلے کی خراش بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ تھوڑا سا اس کو بتائیے کہ اس کو کس طریقے سے لیا جاتا ہے, اس کا طریقہ.
طریقہ توڑ کے ایک کپ پانی میں ابالے.
اچھا, اس کا طریقہ جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو نزلہ ہے, کھانسی ہے, زکام, آپ کو کولڈ ہو گیا ہے سردی سے, تو آپ اس کو ایک کپ پانی میں جو ہے تھوڑا سا توڑ کے جو ہے اس کو ابال لیں, اور پھر اس کے بعد اس پانی کو جو ہے آپ پی لیں. آپ اس پانی کو جو ہے آرام سے, جیسے چائے آپ پیا کرتے ہیں, کاڑھا جو ہوتا ہے, قہوہ وغیرہ جو ہوتا ہے, اس طریقے سے جو ہے آپ اس کو پی لیں تو انشاءاللہ جو ہے ضرور شفا ہوتا ہے. یہ پان کی جڑ ہے, ضرور اس کو یاد رکھیں. یہ ہندوستان میں بہت جو ہے خاص معنی رکھتی ہے, کیونکہ اس سے جو ہے پان کھایا جاتا ہے, اور ہندوستان میں جو ہے ایک روایت ہے کہ کھانا کھانے کے بعد جو ہے پان کھایا ہی جاتا ہے. اس میں جو ہے آپ اس کے بارے میں بتائیں.
یہ نرملی کا بیج.
نرملی کا بیج
یہ خاص طور پہ جو لوگ کا درد کے لیے.
اچھا,
قوت مردانگی کے لیے, طاقت کے کام.
اچھا, یہ ہے نرملی کا بیج جو احمد صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ خاص کس کام کے لیے آتی ہے. یہ جوڑوں کے درد کے لیے آتی ہے, جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے, عام بات ہو گئی ہے زیادہ جو ہے آج کے روزمرہ کی جو زندگی ہے اس میں جو ہے اتنی زیادہ بھاگا دوڑی ہوتی ہے, اس میں جوڑوں کا درد ہونا جو ہے لازمی ہے, تو یہ اس میں کام آتی ہے, باقی طاقت کے لیے آتی ہے کام. اس کو کیسے لیا جاتا ہے اس کو نرملی؟
اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پانی میں بھگو دیتے ہیں.
جی,
ایک دن, دو دن, چار دن,
جی
پانچ دن پانی میں بھگونا پڑتا ہے.
جی,
پانی بدلتے رہے.
جی,
خالی ہو کے پانی بدل دیں, دوسرا پانی ڈال دیں.
جی,
اس طرح چار پانچ دن بدلنے کے بعد
جی
دو تین پیس لے کے ایک کپ دودھ میں
جی
ابالیں.
جی,
اور یہ کھا لیں اوپر سے دودھ.
اوپر سے دودھ پی لیں تو طاقت کا جو ہے یہ کام کرتی ہے, ماشاء اللہ. یہ بہت ایک ہم لوگوں نے جو ہے تین جڑی بوٹیوں کی اس میں جو ہے بات کی, اور تینوں کی تینوں جو ہے بہت زیادہ کامگار تھی. چلیے, ہم ان کا جو ہے شکر گزار کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے ہمیں اتنا ٹائم دیا, اور انشاءاللہ اگلے کسی مقام پہ چلتے ہیں. بہت بہت شکریہ, خدا حافظ.
جی, جیسا کہ آپ کی ہم نے کہ ڈائبٹیز کے بارے میں انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے, لیکن خود بیماری کے حوالے سے تو انشاءاللہ گفتگو ہوگی, وہ اپنی جگہ پر یقیناً اس کی طرف ہم لوگ رخ کریں گے. لیکن جیسا کہ آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا کہ جب ڈائبٹیز ہو جائے تو ایک خاص آدمی کو لائف اسٹائل اپنانا ہوتا ہے, اور ایک طرز زندگی جو ہے بہت تبدیل ہو جاتی ہے. اس سے پہلے بھی اب آپ کو چاہیے کہ آپ کو ڈائبٹیز نہ ہو تو آپ اس کے لیے کیا کریں, آپ کو اپنی زندگی کے یعنی رفتار اور اس میں جو ہے طرز جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو تبدیل کرنی پڑے گی. عام حالات میں آج کل کے زندگی کے بارے میں جیسے ہم نے کہا کہ آن لائن زندگی جو ہو گئی ہے, جو بظاہر آن لائن ہم لوگوں کو تو کر دیتی ہے, لیکن تھوڑے عرصے کے بعد ہم لوگ خود آف لائن ہو جاتے ہیں, اور بہت زیادہ ہم لوگوں کے بدن کو نقصان پہنچنا شروع ہو جاتا ہے. اس حوالے سے ہم نے جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ڈاکٹر حاجی بہادر ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں. چلتے ہیں رباب بہن کے پاس اور وہ گفتگو کا آغاز کریں.
بہت شکریہ حسن, بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر حاجی بہادر صاحب موجود ہیں. چلتے ہیں فوراً اپنی گفتگو کا سلسلہ آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام,
بہت بہت خوش آمدید.
شکریہ
ڈاکٹر صاحب. آج کا موضوع بہت اہم موضوع, ہمارے طرز زندگی کا کافی عمل و دخل رہ چکا ہے اس کے اندر, ہے اس کے اندر ذیابطیس کے بارے میں. سب سے پہلا سوال ایک کریں تو سب سے بنیادی سوال ہے, ذیابطیس ہے کیا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سحر ٹی وی کا, اس کی پوری ٹیم کا بہت مشکور ہوں
جی,
انہوں نے مجھے دعوت دی ذیابطیس کے موضوع پہ میں کچھ گفتگو کر لوں. مجھے امید ہے کہ جو ناظرین ہیں وہ اس موضوع سے بہت مستفید ہوں گے
انشاءاللہ.
تو ذیابطیس غدود کی بیماری ہے بنیادی طور پر. انسانی جسم میں غدود ہوتے ہیں جو ہارمونز بناتے ہیں ہمارے لیے. ذیابطیس ایک ایسی بیماری ہے جس میں خون میں موجود شکر کی مقدار جو ہوتی ہے وہ اپنی جو نارمل مقدار ہے اسے بڑھ جاتی ہے.
اچھا,
تو اس کو ذیابطیس کہتے ہیں. جب شوگر کی مقدار خون میں بڑھ جائے اپنی نارمل مقدار سے,
اچھا,
تو اس کو ذیابطیس کہتے ہیں.
چلیں, یہ تو ہو گئی ایک چھوٹی سی وضاحت ذیابطیس کے بارے میں. اس کی اقسامیں ہیں یا نہیں, یہ کچھ خاص اقسامیں ہیں اس کی؟
اس کے بیسیکلی دو قسمیں ہیں ذیابطیس کی, دو اقسام ہیں ذیابطیس کی, پہلی قسم اور ذیابطیس کی دوسری قسم.
جی,
ذیابطیس کی پہلی قسم میں جو بیسک ہارمون ہے وہ انسولین ہے.
اچھا,
جو ہمارے جسم میں شوگر کی مقدار کو کنٹرول کرتی ہے وہ انسولین ہے. تو پہلی قسم کی ذیابطیس میں انسولین ہوتی ہی نہیں ہے.
اچھا,
قسمتی سے پہلی قسم کی ذیابطیس میں انسولین موجود نہیں ہوتی. دوسری قسم کی ذیابطیس میں انسولین موجود ہوتی ہے لیکن وہ کام نہیں کرتی.
اچھا, तो यानी उसका जो इंसुलिन जिसम में बन रहा है या जो भी, यानी उसका वो काम करना रुक जाता है, तो इस वजह से हो जाती है। आपने कहा पहली किस्म में इंसुलिन होती ही नहीं है, क्यों नहीं होती? यानी कोई एबनॉर्मलिटी है आपके ख्याल में या ऐसे ही इनहेरिटेड आती है हमारे को, यानी विरासत में मिलती है?
जी हाँ, हमारे जिसम में एक उजू है उसको लबलबा कहते हैं।
अच्छा,
तो वो हमारे लिए बीटा सेल्स होते हैं, उसमें लबलबे में बीटा सेल्स होते हैं, वो इंसुलिन बनाते हैं। जब बीटा सेल किसी भी वजह से इनहेरिटेड या वायरल इन्फेक्शन या खुद अपने ऑटो इम्यूनिटी की वजह से ये बीटा सेल्स तबाह हो जाते हैं, नुकसान उसको मिल जाती है, तो ये इंसुलिन पैदा करना छोड़ देती हैं, बंद कर देती हैं। तो इसकी वजह से जब जो डायबिटीज़ हो जाती है उसको पहली किस्म की डायबिटीज कहते हैं।
जी डॉक्टर साहब, जो कि हमारा तर्ज ज़िंदगी के बारे में हफ्ते का दिन चल रहा है, अगर एक सवाल पूछना चाहूँ कि दुनिया में डायबिटीज़ की शरह या परसेंटेज अभी फ़िलहाल कितनी है, बहुत है, कम है, किस तरह से है वो?
जी ये आप सुन के हैरान हो जाएंगी कि पूरी दुनिया में मेरे साथ कुछ रिसर्च स्टेटिस्टिक है, ग्लोबली 6.4% लोग जो है इस बीमारी से मुबतला हैं, और टोटल जो है 285 मिलियन लोग डायबिटीज के मरज में मुबतला हैं। ये आपका डाटा है, और 2030 तक जो एस्टिमेटेड है इसमें 114% इंक्रीज जो है वो
बढ़ जाएगी। अच्छा।
और 60% जो लोग होंगे वो ये एशियन कंट्रीज, जो मिडल ईस्ट है, एशियन कंट्रीज है, इनसे होंगे।
तो अभी आपने कहा एशियन कंट्रीज क्यों, यानी ये कि इसलिए चिकनाई ज़्यादा खाते हैं या मिठाई?
इसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ। करंट लिस्ट जो है दुनिया में, सबसे पहले जो 10 ममालिक हैं उनमें से डायबिटीज जो ज़्यादा है वो इसमें इंडिया,
अच्छा,
चाइना, USA, रशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, जापान, इंडोनेशिया एंड मैक्सिको।
अच्छा,
ये दुनिया के इन 10 ममालिक हैं जहाँ डायबिटिक्स बहुत ज़्यादा फैली हुई है। 2030 के लिए जो प्रोडिक्शन है उसमें इंडिया पहले नंबर पे होगी, चाइना दूसरे नंबर, USA, पाकिस्तान चौथे नंबर पे आएगा।
चले फिर
इसके भी बारे में बता दूंगा, ब्राजील, इंडोनेशिया, मैक्सिको, बांग्लादेश ये लिस्ट में एंटर हो जाएगा।
अच्छा,
एशिया में दो ममालिक है पाकिस्तान और बांग्लादेश जहाँ ये मर्ज बहुत तेजी से फैली जा रही है, और मिडिल ईस्ट में इजिप्ट
जो है उसमें फैल रही है,
मिस्र, उसमें ये मर्ज बहुत तेजी से फैल रही है।
तो ये तेजी से फैलने का अमल क्या है, यानी क्यों आपके ख्याल में फैल रही है? खाने पीने का है या इनकी तर्ज जिंदगी से रहा है जो फैल रही है?
अच्छा, जो वजूहात हैं
जी,
ये अभी रिसर्च इसमें बहुत ज्यादा हो चुकी है
जी,
क्योंकि ये ग्लोबल बर्डन है, तकरीबन $479 बिलियन एनुअल इसका ग्लोब पूरी दुनिया का खर्चा है इस पे, तो ये बहुत बहुत बड़ी जो है ना मसला बनी हुई है। तो एक तो रीज़न ये है कि विरासती
बीमारी है जी,
विरासती। दूसरी, लाइफस्टाइल चेंज हो गई लोगों की।
अच्छा,
लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, सेडेंटरी लाइफ हो चुकी है।
ठीक,
वो वर्जिश लोगों ने, जो एक्सरसाइज होते थे, जो काम होता था,
सही,
वो उन्होंने लोगों ने कम कर दिया या छोड़ दिया बिल्कुल या कम कर दिया है।
सही, सही।
दूसरी चीज, तीसरी चीज़ ये है कि जो मीठा खाना होता है, आइसक्रीम होता है, जो
जंक फूड हो गए,
बिल्कुल ये जो फास्ट फूड्स होते हैं जिनमें ज़्यादा वो मीठा होता है
जी,
तो ये भी एक रीज़न है। तो इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, आप लोग हैरान हो जाएंगे कि जो ग्लोबल में एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, माहौलियाती आलूदगी, इसमें एक बहुत अहम रोल है डायबिटीज़ में
जी।
ये आज नया जो रिसर्च है वो ये है कि माहौलियाती आलूदगी
अहम किरदार है। जी डॉक्टर साहब, यहाँ तक तो बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह गुफ्तगू को आगे चलाएंगे। चलते हैं हसन भाई के पास। जी हसन भाई
जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेना है और उसके बाद इंशाल्लाह नाजरीन की खिदमत में हाजिर होंगे और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत ही जबरदस्त अंदाज में उन्होंने बताई जो स्कोर्स हम लोग माशाल्लाह जो हम लोग कामयाब हो रहे हैं, किसी और चीज़ में तो कामयाब नहीं हो रहे, इसी में सही चले, वो जो है चौथी पोजीशन और पहली पोजीशन हासिल कर लिए बहरहाल इन दो ममालिक ने जो हम लोगों के प्रोग्राम के भी टारगेट हैं। तो अगर रोकना है तो आज से आप लोग तैयारी कर लें, कम से कम आप अपनी अपने खानदान को रोक सकें डायबिटीज से। चलते हैं एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जिन ममालिक की खास तवज्जो वर्जिश पर रहती है, आप देखिए उनका इस लिस्ट में नाम नहीं था, और जो ममालिक वर्जिश में सबसे पीछे रहते हैं उनका नाम डायबिटीज़ और मुख्तलिफ बीमारियों में सबसे आगे होता है। तो आप इन दोनों का आपस में ताल्लुक भी देख लीजिए और अंदाज़ा लगा लीजिए कि मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान का ये था कि मुश्किल से एक मेडल हासिल कर सका गुज़श्ता कई ओलंपिक्स में, बहुत ही तादाद उसकी कम थी। हालांकि तादाद शरीक होने वालों की काफ़ी थी और उधर पाकिस्तान का काफ़ी साल हो गए कोई मेडल हासिल नहीं किया है। लेकिन दूसरे ममालिक को आप देखिए जो वाकई तरक्की कर रहे हैं, तरक्की यानी हर लिहाज से, चाहे वो यानी साइंसी तरक्की हो, चाहे मुख्तलिफ जो यानी फील्ड्स होती हैं इल्म की उस सिलसिले में तरक्की कर रहे हो, उनका नाम जो है वो यकीनन ज़्यादा वर्जिश करने वाले ममालिक में शामिल होता है। इसके बारे में क्या ख्याल है डॉक्टर साहब आपका?
वर्जिश तो बहुत बुनियादी चीज़ है
जी,
सेहत के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप वर्जिश करते हैं तो ये एक्सरसाइज आपकी जो बॉडी की फिजियोलॉजी है वो चेंज करेगी।
सही, तो इसका ज़ाबतीस पे भी कोई असर पड़ेगा?
बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। वर्जिश तो है, वो एक हम कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में नॉन फार्माकोलॉजिक थेरेपी है।
अच्छा।
अगर अब कोई बीमार ऐसा है, मरीज ऐसा है कि वो प्रेस कर सकता है तो प्रेस के साथ अगर वो वर्जिश करते हैं उसको दवाई की जरूरत कानी भी नहीं पड़ेगी।
अच्छा,
इतनी जरूरी चीज़ है।
यहाँ पे एक बात आपकी हसन भाई, मैं आपकी बात को करते चलूँ, अगर आपने देखा हो कि ईरान के पार्क्स में अक्सर जगह पे वर्जिश के जो है जो इक्विपमेंट्स हैं वो लगे हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जाएं पार्क्स में, हर पार्क में ये है, तो एक बहुत अच्छी बात है। एक तरह लोगों को एक रुझान मिलता है वर्जिश की तरफ से, उनकी ज़िंदगी भी, उनकी लाइफ स्टाइल, तर्ज ज़िंदगी बहुत बहुत सेहतमंद तरीके से आगे बढ़ती है। जी डॉक्टर साहब, मौजू की तरफ वापस आते हैं, दो किस्म की ज़्यादतीस होती हैं, एक में तो हम देखते हैं कि लोग इंसुलिन लगा रहे हैं और एक में लोग टैबलेट्स खा रहे हैं, गोलियाँ खा के ही वो हो रहा है। इंसुलिन क्या है, यानी जो हम लगा रहे हैं वो क्या है?
इंसुलिन हार्मोन है।
अच्छा,
इसका कीमियाई नाम ये हार्मोन मौजूद है,
एक हार्मोन है
इंसुलिन है। पंक्रियाज लबलब इसको कहते हैं, वो बनाती है हमारे लिए। काम उसका ये है कि ये एक चाबी की तरह काम करता है जो ग्लूकोज को खुलियों के अंदर धकेल देती हैं, वहाँ इस्तेमाल हो जाती हैं। पहली किस्म की डायबिटीज में इंसुलिन चूँकि बनती नहीं है तो हम बाहर से इंसुलिन हमें लगाना पड़ती है इंजेक्शन से, तो इसके अलावा हमारा कोई चारा ही नहीं है। क्योंकि अगर हमारा अपना लबलबा जो है ना वो नहीं बना सकती इंसुलिन, तो हमें बाहर से इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। 20वीं सदी तक इंसुलिन थे ही नहीं।
अच्छा।
तो लोगों की जो डायबिटीज से जो शरह मौत की जो शरह थी वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा लोग मरते थे। 1921 में चूँकि बाद इंसुलिन ईजाद हुई, उसके बाद जो है ना डायबिटीज़ की जो शरह मौत है उसमें बहुत नुमाया कमी हुई है।
तो ये कंट्रोल हो गया इस पर।
हाँ, पहली किस्म की डायबिटीज़ के लिए जो पहला इलाज है वो इंसुलिन होता है।
इंसुलिन है जी, आपके पास जब है ही नहीं तो आपको बाहर से लेनी
पड़ेगी।
अब अल्लाह ना करे, यानी एक को डायबिटीज हो गई, इसको ही मुश्किल है, उसकी पेचीदगियाँ क्या है उसके लिए?
बहुत अहम सवाल है आपके, बहुत अहम सवाल है। डायबिटीज खुद उम्मुल अमराज है।
ठीक।
उम्मुल अमराज का मतलब यह है कि सबसे सब बीमारियों की अब ये जड़ शुरू हो गई।
अच्छा, ठीक।
अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे
जी,
कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपको बहुत से पीछेदगियों का सामना करना पड़ सकता है।
अच्छा।
सबसे पहले उसमें जो हार्ट है, दिल की बीमारियां हैं।
अच्छा।
खून की जो नालियां वो तंग होना शुरू हो जाती है।
अच्छा।
दूसरी गुर्दों की बीमारियां आनी शुरू हो जाती
है।
तीसरी नजर जाना शुरू हो जाता है
जी, आंख का तो बहुत सुना है,
बहुत सुना है, धुंधापन शुरू हो जाता है आंख का। और चौथी जो पाँव होती हैं, जिसमें खुदा ना खास्ता अगर कोई चोट लग जाए।
अच्छा,
तो जख्म फिर बढ़ती नहीं है
और चला आगे बढ़ता रहता है, फिर पूरा वो पैर काटना पड़ता है।
पैर काटना पड़ता
है, सही है ये?
बिल्कुल सही है।
अच्छा, और अगर अक्सर देखा गया है कि डायबिटीज वालों को एक्जिमा जैसी कोई बीमारी हो जाए, कहीं हाथ पे भी यानी मैंने देखा है, तो वो सही नहीं होता, भरता नहीं है, तो ये भी सही है क्या? वो डायबिटीज की वजह से,
वजह क्या हो सकती है डायबिटीज में? चूंकि मैंने पहले ही कहा कि शक्कर में मकदार खून में बढ़ जाती है, तो जो भी जरासीमी बीमारियां होती है, बैक्टीरिया होती है या फंगल इन्फेक्शन होती है, तो उनको चूंकि खुराक बहुत ज्यादा मिलता है इधर,
सही, तो उस वजह से
वो जाती नहीं है।
अच्छा, वो बैठे रहते हैं,
वो बैठे रहते हैं।
अच्छा।
जब तक आपने ग्लूकोज कंट्रोल नहीं किया
जी,
उस वक्त तक ये लोग, ये बैक्टीरिया, ये जरासीम नहीं जाएंगे।
अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा खाने पीने का जो कि हम कितना असर है डायबिटीज के ऊपर, यानी आया वो डायबिटीज नहीं है और हम खाना पीना जो खा रहे हैं उससे हमको हो सकती है, या अगर है तो हम उस खाने पीने से किस तरह कंट्रोल करें उसको?
उसके ये हुआ कि प्री डायबिटीज एक कंडीशन है, प्री डायबिटीज, डायबिटीज से पहले क्या है
जी,
ये जो सिनेरियो है ये ईरान में भी बहुत ज़्यादा है, इंडिया और पाकिस्तान में प्री डायबिटिक लोग हैं
जी जी।
इसका ये है कि लोगों की डायबिटीज जो ब्लड शुगर लेवल वो हाई होती है उनको पता नहीं होता
जी।
उनको ज़्यादा पता नहीं होता
सही।
लेकिन उसको जो डायबिटीज़ के अहम अलामात हैं वो ज़्यादा नहीं होते हैं।
ठीक।
तो जो खुराक की चीज़ें हैं हम खाते हैं तो उसका इतना असर है कि अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं, ज़्यादा चकनाई वाली खुराक खाते हैं
सही।
तो ये है कि आपकी बॉडी की जो ग्लूकोज है वो बढ़ जाना शुरू हो जाते हैं, आपको ओबेसिटी जो बड़ा ओबेसिटी जो मोटापापन है वो होना शुरू हो जाता है,
अच्छा।
जो टाइप 2 डायबिटीज की तरफ आपको ले जाएगा।
अच्छा 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 डॉक्टर साहब, एक बात मैंने सुनी है करेले के बारे में
जी।
अब ये घर का एक टोटका है, लोग कहते हैं करेले के बारे में
जी।
तो आया करेले का जूस पीने से या इससे कम होता है?
रिलायबल नहीं है,
यानी नहीं है आपके ख्याल में
इतना रिलायबल, क्योंकि अगर आप ये करेला आप खाते हैं
जी
तो आपके जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, क्योंकि साइंटिफिक डेटा इस पे अभी तक अवेलेबल नहीं है
जी,
साइंटिफिकली प्रूव नहीं है कि करेला जो है ना एज ए इलाज के तौर पर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक टोटके के तौर पर अगर आप यूज करते तो ठीक है, उस हद तक तो ठीक है, लेकिन वैसे तो इलाज आप इसको नहीं कर सकते।
अच्छा जी जी, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। हसन भाई क्या करना है?
हाँ, एक बहुत ही अहम चीज हमें बतानी है, वो ये है कि इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हमारी मजहबी उमूर की माहिर मौजूद है।
अच्छा,
उनसे हम गुफ्तगू करेंगे हफ्ते के मौजू के हवाले से। आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ।
वालेकुम अस्सलाम,
खैरियत से आप?
अल्हम्दुलिल्लाह।
हम लोगों का हफ्ते का मौजू जो आज से शुरू होगा वो इस हवाले से है कि कनाअत करना, कनाअत करना होता क्या है इसको, यानी अगर पहला जुमला आप कहना चाहें इस हवाले से क्या कहेंगी?
कनाअत करने के हवाले से मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि इंसानी जिंदगी में कनाअत की किस कदर अहमियत है। देखिए, हमने इस्लामी रवायात में, अहदीस में, कुरान में जो है ना बार बार काने रहने की और कनाअत करने की जो है बार बार हमें सिफारिशात की गई हैं। और अगर इंसान अपनी जिंदगी में काने रहे यानी कनाअत करता रहे तो इसकी जिंदगी में सरासर इसके खुद के लिए आसानियां पैदा होंगी। इंसान अपनी ख्वाहिशात को महदूद कर दे और उसके मुताबिक जो है वो अपनी जिंदगी गुजारने लगे, उसकी जिंदगी खुद की आसान हो जाएगी। मसलन अगर उसके पास जो है, अगर वो अपने वसाइल को महदूद देखता है, अपनी चादर के मुताबिक पांव फैलाता है तो उसकी अपनी जिंदगी अपने लिए आसान होती जाएगी। न सिर्फ अपने लिए आसान होती जाएगी बल्कि अपने इर्द गिर्द के अफराद के लिए भी उसकी जिंदगी दिन ब दिन जो है पहले की निस्बत बेहतर होती चली जाएगी।
अच्छा, इसमें देखिए मसला ये होता है कि हम लोग यकीनन ये बहुत सारी चीजें मुफीद हैं और हम लोग के मजहब में भी ताकीद होती है, लेकिन जब यानी हम लोग की आम जिंदगी शुरू हो जाती है तो उसमें हम लोग ये काम बिल्कुल नहीं करते, उसका नुकसान हम लोगों के लिए क्या हो सकता है?
कनाअत जिंदगी में नुकसान सबसे ज्यादा आपकी अपनी जिंदगी दर्दसर होगी, यानी आपकी जिंदगी के मसाइल दिन बढ़ते जाएंगे। अगर आप अपनी वो क्या कहते हैं अपनी रेंज के मुताबिक अपनी जिंदगी को नहीं गुजारोगे तो आपकी जिंदगी आपके लिए दुश्वार तर होती जाएगी। अगर कनाअत के, अगर आप अपनी जिंदगी कनाअत को आगे लेके जाएंगे, जैसे कि हम अपने आइमा मासूमीन की जिंदगी में देखते हैं कि वो किस तरह अपने महदूद ज़राए के अंदर जिंदगी गुजारते थे, या हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी हमारे लिए मॉडल है, अगर हम इन खतूत से हट कर जिंदगी को गुजारेंगे तो हमारी जिंदगी जो है हमारे असली हदफ से हट जाएगी। हम अपनी जिंदगी को दूसरे कामों के ऊपर सर्व करना शुरू कर देंगे। जैसे आपने कहा कनाअत के हवाले से हमारी इक्तसादी मुश्किलात हमारे बहुत आगे आती हैं, और आजकल की दुनिया में हर इंसान इन मुश्किलात से रूबरू है। और अगर यही इंसान अपने आप को कनाअत का दर्स दे दे, कनाअत के रास्ते पर चल पड़े तो उसकी ये मुश्किलात उसके लिए मुश्किलात नहीं होंगी बल्कि वो अपनी जिंदगी को बहुत ही अच्छे और पुरसकून तरीके से, हम मेंटली हवाले से, हम फाइनेंशियली हवाले से अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से बिता सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया मासूमा नकवी साहिबा, इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में भी आपकी खिदमत में हम लोग यानी कॉल करेंगे और आपसे गुफ्तगू करेंगे। तो आज के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इसके बारे में मैं यही पूछना चाह रहा था कि डॉक्टर मासूमा नकवी साहिबा ने जो बात की वो ये है कि चादर के मुताबिक आदमी पाँव फैलाएं, और इसमें यह है कि यानी जितना वाकई है उसका यानी गुंजाइश है बदन में, वाकई यानी अगर बदन को भी देखा जाए तो उसमें भी एक खास गुंजाइश होती है, उससे ज्यादा अगर आपने कनाअत बदन के सिलसिले में नहीं की
तो
यकीनन डायबिटीज जैसे बीमारियों की शक्ल में सामने आ
सकता है। बिल्कुल, ऐसा आपने मीठे पे कनाअत नहीं की, हाथ मतलब अपने आप को काने नहीं किया कि मैं इस पे इतना काना हूँ तो आपको डायबिटीज हो सकती है, और भी बहुत सारी पेचीदगियां खाना खाने में, हर जगह एक मिसाल मिलती है हमको
यकीनन। तो नाजरीन अगर तैयार हों चलते हैं हम लोग एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और कई जबरदस्त चीजें आपकी खिदमत में पेश करेंगे। जी नाज़रीन, फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी स्टूडियो तेहरान से, और जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था वो इस हवाले से थी कि हम लोग की जो ज़िंदगी हो गई है, हम लोगों ने ख़ुद को असीर कर लिया है इंटरनेट से, और यानी हम लोग अगर खुद को जकड़ लिया है कंप्यूटर से और किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई कंप्यूटर हम लोग की ज़िंदगी में होता है। एक ज़माने में कंप्यूटर हो ही नहीं सकता था कि आपके पास हो, नियता 1980 के दहाई तक कंप्यूटर्स इतने बड़े होते थे कि वो हर जगह लेने ले ही नहीं जा सकते थे आप, और बहुत ही बड़ा कमरा जितना हम लोगों का शायद स्टूडियो है, जो वो मेन जो सेंटर होता था उसका, वहाँ पे बज़ाहिर जो प्रोसेस करने वाला सेंटर होता था वो इतना बड़ा होता था। लेकिन जो चीज़ अब हो गई है वो ये है कि कंप्यूटर्स छोटे हो गए, मोबाइल फ़ोन्स या मुख्तलिफ़ चीज़ें आपके सामने आ गई हैं, और उसमें जो मसला पेश आ गया है वो ये है कि हम लोग की ज़िंदगी बहुत भयानक हो गई है उसकी वजह से। मुसलसल हम लोग नेट पर रहते हैं और कोई और काम नहीं करते। इस सिलसिले में जो तहकीक अभी हुई है वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। डॉक्टर स्कॉट वॉल्स्टन ये एक इक्तिसादना है, अमरीकी इक्तिसादना है, उन्होंने कई फिगर्स ये सब उन्होंने इकट्ठा किए हैं। एक तहकीक जो सन 2003 से 2011 तक इकट्ठा की गई थी उसमें उन्होंने जो चीज़ बताई है वो बहुत ही ज़्यादा यानी वाकई काबिल गौर है, और हम लोग अगर उसके बारे में हम लोगों ने नहीं सोचा तो यकीनन दीगर मसाइल हम लोग के पेश आ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हर मिनट जो आप ऑनलाइन गुजारते हैं उसकी वजह से तकरीबन आप 0.27 का यानी एक हिस्सा जो है मिनट का होता है, तकरीबन 1/4 मिनट जो है आप जो है काम नहीं करते, और दिन में ये तकरीबन हो जाता है कि तकरीबन 390 मिनट या 6.5 घंटे, और 6.5 घंटे में भी आप इस हद तक भयानक है कि यानी महीने में 8 दिन आप गंवा देते हैं ऑनलाइन, आप इसका हिसाब लगाए। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने कहा है कि और ये सोचिए कि हद तक इक्तिसाद को हमारे नुकसान पहुँचा सकता है, और जो चीज़ उन्होंने कही है कि जो लोग यानी तर्ज ज़िंदगी अपनी तब्दील नहीं करते और मुसलसल इंटरनेट पर रहते हैं, तकरीबन 0.12 जो मिनट का जो हिस्सा होता है वो उसमें कम सोते हैं, और तकरीबन 0.5 मिनट जो है वो वक्त उनके हाथ से निकल जाता है जो वो दूसरों को दे सकते थे और दूसरों से मिलने जुलने के काम आ सकते थे वो वक्त, यानी तकरीबन महीने में 18 दिन आप जो है ऑनलाइन गुजार रहे हैं, बल्कि हम यूँ कह सकते हैं कि ऑनलाइन आप वक्त अपना बिल्कुल गंवा रहे हैं। और जो कई चीज़ें उन्होंने कही हैं कि खुद हम 15 से 19 साल जो हमारे नौजवान हैं वो बहुत ज़्यादा अपना वक्त इस पर सर्व कर रहे हैं, उसकी वजह से उनका टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा है और उनकी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है, और यानी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यानी बहुत सारे फैक्ट्स और फिगर्स इस वक्त हमारे सामने हैं, वो इंशाल्लाह शायद अगले प्रोग्रामों में या ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं जो मुख्तलिफ चीज़ें हमने तैयार की हमारे फेसबुक पेज पर आज आपके आप लोग देख सकते हैं facebook.com/SUT Morning Show पर। चलते हैं ब्रेक लेते हैं, उसके बाद एक और मज़ेदार सी चीज़ खाने पीने के हवाले से आपको बताएंगे। आजकल एक और चीज़ का जो मौसम चल रहा है वो है ज़ुकाम का, यानी यकीनन मुख्तलिफ फलों का होगा लेकिन ज़ुकाम का भी अपनी जगह पर है और उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग जब ज़ुकाम हो जाता है तो अपना ख्याल नहीं रखते, उसकी वजह से बाज़ लोगों का देखा गया है कि बहुत ज़्यादा लंबा खींचता है उनका नज़ला ज़ुकाम, और दूसरों के यानी आप अपने हद तक न रखिए जो आपको अपनी तकलीफ़ होगी, एक यानी हम उस शख्स को मुखातब कर रहे हैं जो इस वक्त उसको ज़ुकाम है या नज़ला है, आप दूसरों का भी थोड़ा ख्याल रखें, आप देखिए कि किस हद तक आप नुकसान पहुँचा सकते हैं दूसरों को, और उनकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल इस पर रहेगी कि आपके दूर से आप जैसे ही दिखते हैं वो थोड़ा अपना रास्ता तब्दील करके चले जाते हैं, क्योंकि आपका ज़ुकाम इतना लंबा खिंच चुका है कि वाकई दूसरों के लिए थोड़ा परेशान कुन है। तो इस हवाले से मैं बताना चाह रहा था, कहा जाता है कि जो चीज़ इस्तेमाल आप करें, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको खोलने की, हाँ विटामिन ई का यानी जो इस तरफ है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके बदन के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, और मुख्तलिफ फल यहाँ तक जो उसकी गोलियाँ आती हैं वो भी अगर इस्तेमाल कर लें फौरी तौर पर तो वो आपको मदद करेगी ताकि जल्द अज़ जल्द काबू पा सकें। और कोशिश करें मीठी चीज़ों का, शक्कर या शहद तो यानी अगर खालिस हो तो वो अच्छा है, लेकिन दूसरे ये मुख्तलिफ किस्म होते हैं, गुड़ है ये सब है वो उसका इस्तेमाल या बिल्कुल कम कर दें या अगर थोड़े दिन रोक दें तो आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है। दूसरी चीज़ जो ये है वो आप मुख्तलिफ किस्म के सिट्रस आप यानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या जिसमें विटामिन सी हो, कीवी है, मुख्तलिफ किस्म के संतरे हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें भी आपके लिए बदन के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। कोशिश करें कि ऐसे यानी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जो आपके बदन के लिए इस लिहाज से मुफीद हों कि नरम हों खाने में, मुख्तलिफ किस्म के सूप हैं या उबली हुई सब्ज़ियाँ हैं वो आपके बदन के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं और आपके बदन को वक्त देती हैं कि वो काबू कर सके, गर्म होना तो अपनी जगह पर अहमियत रखता ही है। और जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था इस हवाले से कि जिन चीज़ों में आप समझिए कैरोटीन कलर बीटा कैरोटीन हो वो भी आप इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हत्ता यानी टमाटर, ग्रेपफ्रूट, तरबूज, तरबूज वैसे ठंडा नहीं, और जैसे आड़ू टाइप के जो मुख्तलिफ फल होते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और गाजर का भी आप भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो मैं दिखाऊंगा, हाँ अच्छा, ये सबसे अहम है, पानी का इस्तेमाल या मुख्तलिफ जूसेस का इस्तेमाल आप करें, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि जो है आपका बदन जल्दी काबू कर सके। एक चीज़ जो कही जाती है इस सिलसिले में वो ये है कि बहुत ही अहम थी, एक सेकंड में मैं अभी आपके लिए निकालता हूँ उसमें। अच्छा, एक जो बहुत ही अहम चीज़ के जो मुख्तलिफ खाने होते हैं खुसन उसमें जिसमें मैदा होता है वो उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि मसला ये हो जाता है कि बदन काफ़ी कमज़ोर हो चुका होता है, उसको एक एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि जल्द अज़ जल्द उसके ऊपर यानी अपने ज़ुकाम के ऊपर, अपने नज़ले के ऊपर काबू कर सके। इसमें जो चीज़ें जो आपके खून को यानी जो आपका दिफाई निज़ाम है उसको कमज़ोर कर रही हैं उसका इस्तेमाल न करें। इसके बारे में मैं डॉक्टर साहब से बल्कि पूछना चाहूँगा कि हम लोग के बदन का दिफाई निज़ाम जो होता है वो एक ख़ास होता है, उसमें छोटी सी बीमारियाँ जैसे एक नज़ला ज़ुकाम है और आगे जाके मुख्तलिफ किस्म की दीगर बीमारियाँ होती हैं, इसको हम लोग कैसे मजबूत कर सकते हैं फौरी तौर पर नज़ले ज़ुकाम में, आप दूसरी बीमारियों की तरफ नहीं जाएंगे।
नज़ले ज़ुकाम के लिए अपनी नॉर्मल होती है क़ुव्वत मुदाफ़त हमारे होती है, लेकिन अगर आप जो पल कहते हैं विटामिन सी कहते हैं विटामिन्स कहते हैं तो आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत होती है इससे
जी। अच्छा, तो इससे वो मदद कर सकते हैं कि काफ़ी हद तक हम काबू कर सकते
बहुत काफ़ी हद तक हमारे नेचुरल, लेकिन हमें टाइम नहीं देते हैं, बदकिस्मती से हम ये है कि जब हमें नज़ला ज़ुकाम हो जाती है तो हम फौरन जो है दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं,
ये बहुत
टाइम नहीं देते
हैं। हाँ, टाइम भी नहीं देते, और उसके अलावा जो है वो ये है कि बस दवाओं पर ही वो हो जाता है, ज़िंदगी कोई उसमें तब्दीली
कोई नहीं है, हम टाइम नहीं देते, बस जल्दी है, बस हमें जल्दी ठीक होना है और वो उसके लिए हम दवाई खाने।
तो उसमें बाज़ जगहों पे ये भी बुरी आदत देखी गई है कि फ़ौरन जाके इंजेक्शन भी लगवा लेते हैं और बहुत ही हैवी इंजेक्शन लगाते हैं। तो नाज़रीन चलते हैं एक ब्रेक लेते हैं, आप मोहम्मद नूरी साहब की आवाज़ में एक तराना सुनिए, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, हम लोग फिर आ गए हैं, और एक चीज़ जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो इस हवाले से है कि डायबिटीज़ में जो हम लोगों की ज़िंदगी तब्दील हो जाती है उसमें एक बहुत ही अहम, उसका यानी एक बहुत ही अहम रुकन जो होता है वो ये है कि हम लोग सोचते नहीं हैं कि कितना खा रहे हैं। एक चीज़ मैंने इससे पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी वो ये है कि अल्लाह मियाँ ने हर चीज़ का एक कोटा रखा है, कोटा आप जितनी जल्दी पूरा कर लें या आप ज़िंदगी भर उसको चलाते रहें वो आपके यानी हाथों में होता है, आपके मैं कह सकते हैं कि आपकी ताकत होती है कि उसके ऊपर काबू कर सकें या ना कर सकें। अब आप देखिए आप कितने ताकतवर हैं, काबू कर सकते हैं अपनी नफ्स पर या नहीं। चलते हैं रुबाब बहन के पास।
बहुत शुक्रिया आसान बखुजाया के बारे में, चलते डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब, सेहतमंद इकदामात ऐसे कौन कौन से हैं जिनसे हम ज़ियाबती से बच सकें या अगर हो गया है उसको कम कर सकें?
सबसे पहले अगर बचना है ज़ियाबती से बचने के लिए तो जो इकदाम है वो ये है कि पहले जो है ना आप वर्जिश बाकायदगी से करते, जो लोग वर्जिश नहीं करते उनको वर्जिश करनी चाहिए, जो लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं उनको मीठा कम करना चाहिए, ठीक है। तीसरी जो चीज़ है अपनी जो जनरल सेहत आमा है उसका बहुत ख्याल रखना चाहिए ताकि ये मर्ज जो है ये इसको लाहक ना हो, ये इनको जहाँ तक हो सके ये बचा जा सके। दूसरी जब आपको खुदा ना होता या मुझे या किसी को डायबिटीज़ हो जाती है तो उनको क्या करना चाहिए, उसको भी अपने वर्जिश है उसको बाकायदगी से करनी चाहिए, खुराक के मामले में उसको इतदाल से काम लेना चाहिए, मीठा काम कर, इसका मतलब ये नहीं कि आप शक्कर खाना ही छोड़ दें, नहीं, ये आपकी ज़रूरत है लेकिन आप उसका मकदार अपने जो ज़रूरियात के मुताबिक उसको खा लें। और तीसरी चीज़ जो अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक अपने जो दवाइयाँ हैं वो उसको बाकायदगी से
टाइम
पर ले लें। चौथी चीज़ जो अपनी ग्लूकोज है अपने पास ग्लूकोमीटर रखें, ग्लूकोज रेगुलरली अपने जो है ना चेक कर लिया करें, घर में चेक कर लिया करें, ये कोई मुश्किल तरीका नहीं है, एक आसान सा तरीका है ग्लूकोज चेक करने का, ये अब बहुत आसान हो चुका है। रेगुलरली अपने ग्लूकोज ब्लड प्रेशर ये चेक करना चाहिए।
अच्छा,
ये सेहतमंद इकदाम है, इसे आप जिंदगी
बच सकते हैं या अगर हो गया तो कम कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुफीद गुफ्तगु रही आपके साथ, इंशाल्लाह कि हमारी नाज़रीन को भी पसंद आई होगी आपकी गुफ्तगु। जी नाज़रीन, मैं आपको बताते चलूँ कल है इतवार का दिन, और इतवार का दिन हमेशा की तरह नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे फरिश्तों का दिन होता है, तो कल हमारे साथ डॉक्टर आगला हकीमी मौजूद होंगी, इंशाल्लाह उनसे गुफ्तगु करेंगे बच्चों की मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में। जी हसन,
बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोगों का हफ्ते का मौजू तो चल ही रहा है, आपको मालूम है, तनात के हवाले से। और ज़रूर बताना चाहेंगे कि हम लोगों के फेसबुक के ज़रिए आप हमसे बराह रास्त रब्ता बरकरार कर सकते हैं, और जो हम लोगों का कह सकते हैं वॉइस मेल बॉक्स है, उस पर भी आप इस सिलसिले में कोई पैगाम हो वो डाल सकते हैं। फेसबुक पर फौरी तौर पर हम कोई भी आप सवाल पूछेंगे, हम आपका जवाब दे सकते हैं। और इसमें यानी एड्रेसेस जो हम लोग के हैं वो अपने यानी सहर उर्दू टीवी का अपनी जगह पर, लेकिन सुबह ज़िंदगी का अलग हम लोगों ने खसूसी पेज भी रखा है कि यानी ख़ुद हम लोग के वेबसाइट पे भी और फेसबुक पे भी, तो उस पे भी आप आके हमसे रابطہ बरकरार कर सकते हैं। और रुबाब मैन, एक चीज़ जो ऑनलाइन रहने के हवाले से है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि दिन में चंद दफ़ा जो है आके फेसबुक पेज को अपने अपडेट करें। कुछ फनी मसाइल की वजह से नहीं हो पा रहा था बीच में, लेकिन बहुत जल्द हम लोग आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे, और दिन भर तो नहीं लेकिन कुछ लंबे अरसे के लिए आपके साथ हम रहेंगे फेसबुक पर।
जी, हम इजाज़त चाहेंगे, मुझे, डॉक्टर साहब और हसन भाई को इजाज़त दीजिए।